بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ نئی حکومت کو درپیش اہم چیلنجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں دہشت گردوں نے زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کو نشانہ بنایا اور اس پر راکٹ داغے اور پھر بم سے اس کو اڑا دیا۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ جس دن یہ تخریبی کاروائی انجام پائی ہے، اسی دن کوئٹہ میں میڈیکل کی طالبات کی بس میں دھماکہ ہوا اور پھر بولان میڈیکل کالج کے ایمرجنسی سیکشن میں خودکش دھماکے اور دہشت گردوں کی فائرنگ میں درجنوں افراد مارے گئے۔ ان حملوں کی ذمہ داری لشکر جھنگوی نے قبول کی۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا مذہبی انتہا پسندی سے کیا رابطہ ہے، مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی بڑھنے کے ذمہ دار کون ہیں، لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ کا جو اہل سنت والجماعت کے نام سے سرگرم ہے، طالبان اور القاعدہ سے کیا رابطہ ہے، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی میں امریکہ اور سعودی حکومت کا کردار کیا ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے پاکستان کی نئی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی وکالت کی تھی، اور حکومت بننے کے بعد وزیر داخلہ چودھری نثار نے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ جو گروہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، پاکستان کے نظام کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور بانی پاکستان کے احترام کا قائل نہیں ہے اور ان کی ریزیڈنسی کو بم لگا کے اس نے اڑا دیا، اس سے مذاکرات کے ذریعے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار نذیر حسین صاحب کو۔ لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھیوں نے کوشش کی ہے کہ آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے پاکستان مسلم لیگ کے کسی رہنما یا کارکن کو، لیکن اب تک کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ اگر ان میں سے کسی سے رابطہ ہو گیا تو پاکستان مسلم لیگ کے کسی رہنما یا اس کے کارکن سے گفتگو ہوگی، ورنہ کسی تجزیہ نگار کو آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
پاکستان میں پچھلے تقریباً 11 سال سے فاٹا کے قبائلی علاقوں خیبر پختونخوا، کراچی اور بلوچستان سمیت ہر جگہ کم کہیں زیادہ دہشت گردی کی خواشام وارداتیں کسی وقفے کے بغیر جاری ہیں، جن میں ہزاروں بے گناہ شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تازہ واقعے میں زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی اور کوئٹہ میں طالبات کی بس اور بولان میڈیکل کمپلیکس میں بم دھماکوں اور فائرنگ سے ہونے والے افسوسناک جانی و مالی نقصانات سے یہ تاثر اور بھی قوی ہو جاتا ہے کہ حکومت کے سامنے بدامنی اور دہشت گردی کی شکل میں جو چیلنج ہے اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ نو منتخب حکومت کے سامنے جو انتہائی اہم اور فوری حل طلب مسائل ہیں، ان میں ایک مسئلہ دہشت گردی کا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے چند روز قبل ان دہلا دینے والے واقعات کا جائزہ لینے کے لیے کوئٹہ کا دورہ کیا، اور وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ تشدد پسندوں سے انہی کی زبان میں بات ہوگی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہم زخموں پر مرہم رکھنے اور روٹے ہوئے لوگوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات صرف ان سے ہوں گے جو اس کے لیے تیار ہوں۔ دہشت گردی کے سد باب کے لیے وزیر اعلیٰ سے مل کر بعض فیصلے کر لیے گئے ہیں، جن کی وزیر اعظم سے اب حتمی منظوری لی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات اور تنازع کا پرامن حل نکالنا چاہتی ہے۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ حکومت مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور اس نے مذاکرات کی میز پر آنے والے تمام گروہوں سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر طالبان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ طالبان اس سے پہلے حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر چکے ہیں۔ پاکستانی طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان نے ولی الرحمان کے قتل کی وجہ سے حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس میں تاحال کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاکستانی طالبان نے 2012 کے آخر میں پہلی بار کہا تھا کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم اسے طالبان قیدیوں کی آزادی اور پاکستان کی بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات کی ضمانت فراہم کیے جانے سے مشروط کر دیا تھا۔ امریکی ڈرون حملے میں اپنے ایک کمانڈر ولی الرحمان کی ہلاکت کے بعد طالبان نے حکومت پاکستان پر امریکہ کے ساتھ تعاون کا الزام لگاتے ہوئے مذاکرات کی تجویز واپس لے لی تھی۔ سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان نے حکومت سے مذاکرات کی جو پیشکش کی تھی وہ مذاکرات صرف اپنے مطالبات تسلیم کروانے کے لیے چاہتے تھے، اپنی تشدد پسندانہ خود چھوڑنے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں۔ یعنی طالبان پر جب کوئی بڑا دباؤ ہوتا ہے اور کسی طرف سے انہیں شدید نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے یا ان کے مد نظر کسی خاص فائدے کا حصول ہوتا ہے، تب وہ مذاکرات کو حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تک یہ طرز فکر اور طرز عمل جاری رہے گا طالبان سے مذاکرات کامیاب ہوں گے نہ ہی بدامنی پر قابو پایا جا سکے گا۔
یا ناظرین، پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار نذیر حسین صاحب موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ نذیر حسین صاحب، السلام علیکم۔
جی السلام علیکم۔
جناب، پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات، قائد اعظم ریزیڈنسی اور کوئٹہ کے واقعے پر آپ کے تاثرات کیا ہیں؟
مہدی شرافت صاحب، پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا زیرو نہیں ہے جو ان واقعات پہ خون کے آنسو نہیں رو رہا، کیونکہ زیارت پہ حملہ جو ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ حملہ ہے، اور کسی ہمارے دانشور نے یہ کہا ہے کہ یہ آئیڈیالوجیکل ٹیررزم ہے، جو ایلیمنٹس ہیں وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بولان میڈیکل کالج میں جو کچھ ہوا، نہتی طالبات پہ جو حملہ ہوا، اور آج آپ کو بڑی پریشان کن ایک خبر بتانا چاہ رہا ہوں کہ مردان میں ایک جنازے پہ حملہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے، ایک سسٹمیٹک موومنٹ ہے، جو دہشت گرد جو ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا مذہبی نہ ہوں، وہ پاکستان کی حکومت کو اور پاکستانی سلطنت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے چکر میں ہیں۔ ابھی میں ماضی میں بہت زیادہ نہیں جانا چاہ رہا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان تمام معاملات کا شاخصانہ جو ہے وہ 70 کی دہائی میں جا کے ملتا ہے، کہ جب حکومت وقت نے ایک سسٹمیٹک پالیسی کے تحت دہشت گردی کو فروغ دیا، دہشت گردی کاروائیوں کو پروان چڑھایا، مدرسوں کو بلڈ کیا، اور آج یہ پود جو ہے، یہ پیداوار جو ہے وہ بڑھ کے سامنے آ چکی ہے۔ لہٰذا ان کو نبڑنے کے لیے، ان کو ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے کنسنٹریٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مخلوط حکومت ہے وہ شاید ناکام ہو چکی ہے اور وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی یا اس طرح کی کچھ باتیں تھیں، لیکن خود آپ نے بھی یہ فرمایا اور آپ کی رپورٹ میں یہ بات ہوئی کہ تحریک طالبان نے یہ پہلے کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ وہ مسلم لیگ نون سے، جماعت اسلامی سے اور تحریک انصاف جو ہے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ہے، اور اسی طرح جو نیشنلسٹ ہیں ان کی حکومت بلوچستان میں ہے۔ لہٰذا اگر وہ اپنے ان معاملات میں سنسیئر ہوتے تو شاید یہ جو وجوہات ہیں، یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، ये शायद ज़हूर पज़ीर ना होते। इसमें दो बड़ी वजूह हैं। एक तो ख़ुद वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली ख़ान ने ये कहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। पाकिस्तान की जो 5 और 6 प्रीमियर एजेंसीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगी। और दूसरी बात है, आप ये देखिए कि पाकिस्तानी हुकूमत को ये बात एक दफ़ा नहीं बल्कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये डिसाइड करना है कि ये जो तालिबान हैं ये क्या पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी हैं या पाकिस्तान के लिए एक एसेट है। जब ये चीज़ तय हो जाएगी मैं समझता हूँ कि एक कंसंट्रेटेड एफर्ट से इसका हल तलाश किया जाएगा और तलाश किया जाना है। लेकिन इस समय मैं आखिरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक कंसंट्रेटेड एफर्ट है जिसमें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें गैर मुल्की ताकतें भी मुलव्वस हैं, कुछ हमारे हमसाया ममालिक भी मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम और समाजी अदम इस्तेहकाम फैला कर इस पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का जरिया बना। लेकिन हम अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारी हुकूमतों की गलतियां हैं, हमारे आवाम की गलतियां हैं, हमने खुद इन ग्रुप्स को परवान चढ़ाया है और आज ये इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हुकूमत की रिट को ये चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन क्वेटा के जो वाकयात हैं और या और भी दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं, ख़ास तौर से जो कायद अजम रेजिडेंसी का मामला है, इसमें पाकिस्तान की कौम जो है वो खून के आंसू रो रही है। यकीन मानिए हमें उस बात का एहसास है, पाकिस्तानी नौजवानों के इस बात का एहसास है। अगर आप सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे या फेसबुक पे जाएं तो ये देखें कि पाकिस्तानी नौजवानों ने इसका किस तरह बरमला इजहार किया है। और हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है अब कि वो अपने वादों का पास करे। लिहाजा हमें यही समझ आ रहा है कि हुकूमत को कुछ ना कुछ कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है वो करनी पड़ेगी। और इतलात के मुताबिक ये भी है कि 21 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान जो है, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, वजीर दाखला जो हैं, वो कोई कंप्रीहेंसिव पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन अब माफ़ी चाहता हूँ, अब ये पॉलिसियों का वक्त नहीं, उस 20 सालों से हम पॉलिसी ही बना रहे हैं, अभी इंप्लीमेंटेशन का वक्त है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त इंटेंसिव केयर यूनिट में है और अगर तमाम पोलिटिकल पार्टीज मिल के और इंटेलिजेंस एजेंसी मिल के कुछ नहीं करती तो पाकिस्तान के हालात खुदा ना खासा मजीद ख़राब हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं लंदन स्टूडियो, डॉक्टर इनायतुल्ला अंदराबी। अंदराबी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी अंदराबी साहब, ये जो दो बड़े वाकयात हुए हैं हालिया दिनों में, कायद आजम रेजिडेंसी को बम लगा के उड़ा दिया गया और क्वेटा में जो हमला किया गया, इन दोनों हमलों के बारे में आप क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये एक एतबार से इनमें जरा बहुत ही जारहाना अंदाज है, इसलिए कि खुद कायद आजम की रेजिडेंस को निशाना बनाना इसमें काफ़ी एक एग्रेसिव, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन ये वाकयात तो बहरहाल वहाँ अब कई सालों से हो रहे हैं और मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में जो बातें आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो बच्चों को निशाना बनाया गया, तालिबात को, तो असल में निशाना वो निशाना कुछ चूक गया है। असल निशाना शिया तालिबात थी जो इसके बाद बस में आने वाली थी, लेकिन निशाना कुछ चूक गया और ये तालिबात निशाना बन गई। तो ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया में सीनियर कॉलम नवीस जो वहाँ हैं उन्होंने ये बात कही है। तो ये मामला तो वहाँ वहाँ चल रहा है और बहुत ही गंभीर है। और मेरी ये तश्वीश है, आपके जो पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठे हुए मेहमान हैं उनको मैं पूरे ड्यू रिगार्ड के साथ मैं उनके हवाले से ये बात करूँगा। वो जो फरमा रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है और ये है वो है, तो मेरी ये बहुत ही कंसिडर्ड राय है कि पाकिस्तान इस मसले को अभी तक समझ ही नहीं पाया है। यानी मसाइल जो होते हैं, अब देखिए इंडिया के पास कश्मीर का मसला है और पिछले 60 साल से है। अब कश्मीर में जब मौजूदा शूरिश बरपा हुई आज से 20-25 साल पहले, तो इंडिया के एक मारूफ जर्नलिस्ट ने, जो कि अब यानी इंतकाल कर चुका है, निखिल चक्रवर्ती, निखिल चक्रवर्ती ने यह कहा कि कश्मीर में अमन अमान बहाल करना या कश्मीर के मसले के साथ निमटना ये इंडिया के सियासतदानों की स्टेट्समैनशिप का इम्तिहान है। तो आप देखिए कि वो मसाइल जो होते हैं ये एक इम्तिहान होते हैं रियासत की क्यादत के लिए। अब इस वक्त आप देखें कि ईरान को जो मसाइल दरपेश हैं, दुनिया में किसी रियासत को ऐसे मसाइल और इतने ज्यादा मसाइल दरपेश नहीं है, लेकिन ये क्यादत का पहला पहला मरहला जो होता है वो डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस के बाद ही इलाज का मरहला आता है। मैं आपको बहुत ही एतमाद के साथ कहता हूं और ये बहुत ही पेनफुली कह रहा हूं आपसे, यानी इससे 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 हमारे यानी इससे हमारे एहसास जो है मजरूह हुए हैं इस बात से कि पाकिस्तान में इस पर कोई लोग एक ही पेज पर नहीं है। कुछ लोग इनको मुजाहिद समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान बन गया था इस्लाम के लिए लेकिन हम रास्ता भूल गए, अब ये हमें अपने रास्ते पे ला रहे हैं। इनको इनके बारे में कोई डायग्नोसिस ही नहीं है, और जब डायग्नोसिस नहीं है तो फिर इलाज कैसे होगा। अब जैसे कि वो आपके मेहमान बता रहे थे कि इसमें हमसाया ममालिक शरीक हैं, तो वो भी एक अजीब सा एक क्लीशे चला है पाकिस्तान में, एक अजीब सी ऐसी बात जो जिसके कई मानी है। मसला ये है कि यहां अफगानिस्तान के जब वो सो कॉल्ड जब जिहाद हो रहा था तो यहां अमेरिका के कहने पर आल सऊद का पैसा, सऊदी इंटेलिजेंस का पैसा, वहां की रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट का पैसा आया है, और वो अब भी कार फरमा है। उस पर कुछ बात मैं आगे भी करूंगा, लेकिन मसला यह है कि हमसाया ममालिक इन्वॉल्व नहीं है। एक वाहिद एक शिद्दत पसंदी की एक तालीम दी जा रही है और उसका सारा सारे कुछ उसके उसका कनेक्शन जो है वो सऊदी किंगडम से हो रहा है और किसी से नहीं। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसी बहस शुरू हो रही है कि भाई यहां पे सऊदी अरब और ईरान आपस की जंग खेल रहे हैं, मामला वो नहीं है। मामला सिर्फ इतना है कि ये जो आपने बहुत ही अच्छा आपने इसमें जो जो दो चीजें आपने इसमें पॉइंट आउट की है, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी। दहशतगर्दी हमेशा इंटेलिजेंस इदारों और बिरूनी साजिशों वगैरह वो उसका मसला होता है, लेकिन इंतहा पसंदी एक माइंड के साथ उसका ताल्लुक है, एक सोच के साथ ताल्लुक होता है। तो वो इंतहा पसंदी उसमें बेसिकली यहां पे सऊदी और आल सऊद का सारा किरदार है और किसी का नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मसला है। तो मेरी गुजारिश यह है कि इस मसले को पहले पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह थर्ड बियर समझा जाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं करता है तो मरीज शफायाब नहीं होता है, मर जाता है। मैं तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में मेरी तशवीश है, इसलिए कि यह मसला वहां समझा नहीं जा रहा है। तो इंशाल्लाह आप मेरी तरफ आएंगे तो कुछ और गुफ्तगू।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि हमारे साथियों ने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा या सरगर्म कारकुन से राबता हो जाए, मगर अब तक राबता बरकरार नहीं हुआ है। इस वक्त राबता बरकरार हुआ है टेलीफोन लाइन के जरिए पाकिस्तान के एक सीनियर तजिया निगार आगा मसूद हुसैन साहब से। आगा मसूद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
आगा मसूद हुसैन साहब, पाकिस्तान में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है?
देखिए, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी जो है वो एक दूसरे की मतलब एक खास शक्ल है और इन दोनों को अलहदा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि यही इंतहा पसंदी बात है दहशतगर्दी का सबब बनती है। देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है मैं समझ रहा हूँ कि उसको लोग समझते नहीं है। इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है गैर ममालिक की, और गैर ममालिक में मेरी मुराद यह है कि इसमें अमेरिका बहादुर भी शामिल है, इसके अंदर जनाब इसराइल भी शामिल है, और इसके अंदर जनाब अफगानिस्तान भी शामिल है। ये लोग सारे लोग हैं, और मैं तो मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अभी दो तीन दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, उनके भी कुछ रुझान इसी तरह से जो बलूचिस्तान में हो रहा है जो हो चुका है। लेकिन हम तो बहुत अरसे से ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का जो मसला है या दहशतगर्दी का मसला है वो बाकायदा उसको प्रमोट किया जाता है, और प्रमोट कौन करता है? ये लोग नजरियाती लोग नहीं है कि जो लश्कर जंगी ने जैसे कि कबूल किया, कल तालिबान को मारा गया, और इसके बाद बलूचिस्तान आर्मी ने कहा कि हमने कायदे आज़म की रेजिडेंसी को उड़ाया है। ये नजरियाती लोग नहीं है, ये किराए के कातिल हैं। और यह है कि ये इस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और उनका बुनियादी मकसद डिस्टेबलाइज करने का इंटरनेशनल पावर्स का यह है, आलमी साम्राज्य का, कि किसी तरीके से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको हम हासिल कर लें। इसी यही वजह है और उनका एक और तरीकेकार यह है कि वो के पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस हद तक मजरू और मुजमहल किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो खुद ही बैठ जाए उसके बोझ से। तो मैं याद कर रहा हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ एक पाकिस्तान में जंग का जो थिएटर है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लाया जा रहा है और इसके सिलसिले में हमने बहुत से कॉलम लिखे और पाकिस्तान से बाहर भी जाके हमने इस मसले को उठाया है और हमसे बहुत से लोगों ने इत्तेफाक किया है कि ये जो पाकिस्तान में हो रहा है ये एक बाकायदा आलमी साजिश है और आलमी साजिश का बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से कमजोर कर सकते हैं। अब देखिए कि फाटा के अंदर कौन बैठा हुआ है जहाँ ड्रोन हमले बैठे हैं, ये उज़्बेक हैं और इसके अलावा चेचेंस हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनका क्या मकसद है, ये क्या क्या नजरियाती लोग हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं? तो ये वो लोग हैं कि जिनको बाकायदा असलाह मिलता है, पैसे मिलते हैं और ये वो कार्रवाई कर रहे हैं। आज मरदान में 15 आदमी जो है उसमें शहीद हुए हैं, उसमें एक तहरीक इंसाफ का एमपी भी शामिल है। ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ करा रहे हैं? तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये नजरियाती लोग नहीं है, खुदा के लिए नजरियाती लोग ऐसे नहीं होते। कराची में बहुत से ऐसे मदरसों को जानता हूँ जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, लेकिन वो इतने अच्छे मदरसे हैं, वो बाकायदा कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं, साइंस की तालीम दे रहे हैं और इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बातें करते हैं। ये जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, इनका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? इस्लाम ने तो कभी, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई तालीम इस्लाम के किसी भी दौर में ऐसी तालीम नहीं रही। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अपनी एक बका की जंग लड़ रहा है और उसमें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग शामिल हैं कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, वो ही साम्राज्य के एजेंट हैं कि जो पैसे के बंबूते पर इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। वरना पाकिस्तान, आप यकीन करें, पाकिस्तान वसाइल के अखबार से भी और पाकिस्तान के अपना जो इनबिल्ट उसकी स्ट्रेंथ है वो इतना मजबूत है, वरना और कोई मुल्क होता तो अब तक मेरा ख्याल है कि वो तो बैठ जाता। लेकिन बहरहाल मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने का इंटरनेशनल एजेंडा है और सिर्फ यही है कि इनके न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह कर दिया जाए। इसके बाद ये है कि जिसकी हेजमनी होगी इस इलाके में उससे आप भी वाकिफ हैं, अब्बास साहब, मैं भी वाकिफ हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा। नज़ीर हुसैन साहब, आपने गुफ्तगु मुलाहिजा फरमाई आगा मसूद हुसैन साहब की। मेरा जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में मुमकिन है कि दीगर अनासिर भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे हों, लेकिन जो चीज़ सामने है वो मजहबी इंतहा पसंदी है और जहाँ तक आलमी साजिश का सवाल है तो इस्लाम में इंतहा पसंदी का तो कोई जगह ही नहीं है। जो इस्लाम मुस्लिम इंतहा पसंद ग्रोह जो वजूद में आए हैं, ये खुद आलमी साजिश के नतीजे में आए हैं। अलकायदा एक आलमी साजिश के तहत तश्कील दी गई, तालिबान को आलमी साजिश के तहत तश्कील दिया गया, जिबतुन नुसरा जो वहाँ शाम में जो लोगों को कत्ल करके और उसके बाद उनका सीना चाक करके उनका जिगर निकाल के खाते हैं, क्या इस्लाम का कोई फिरका इसकी हिमायत कर सकता है? लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो ये मजहबी इंतहा पसंदी, बहरहाल ये लोग हैं, ये इंतहा पसंद ग्रोह हैं। मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि पाकिस्तान में जो इंतहा पसंद ग्रोह या दहशत गर्द ग्रोह जो अनासिर इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, उनका असल हदफ क्या है?
देखिए मेहदी शरीफ साहब, जब आप गैर की आग में अपने हाथ झोंकेंगे तो आपके हाथ जरूर जल जाएंगे। पाकिस्तान गुज़िश्ता 33 सालों से हालत जंग में है और हमने अपने हाथ जो हैं अफगानिस्तान की जंग में और सो कॉल्ड जो दहशतगर्दी की आलमी जंग है उसमें झोंको लिए हैं। ज़्यादा जब आप ये काम करेंगे तो आपके हाथ ज़रूर जलेंगे। और दूसरी, मैंने अपनी ये गुजारिश की थी कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत जो है वो एक डायनेमिक सिचुएशन में है, उसको मालूम नहीं है कि तालिबान हमारे दोस्त हैं या तालिबान हमारे दुश्मन हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। और मैंने ये भी गुजारिश की थी कि जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो तालिबान का वजूद जो है वो खुद खतरे में पड़ जाएगा। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, इंतहा पसंदी जो है एक एलिमेंट है, एक बहुत बड़ा मसला है, एक साइकोलॉजिकल कुव्वत है जो ये बताती है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो एक ख़ास ग्रुप कर रहा है वो जायज़ है, वो ठीक है, वो शरई है, वो हक़ पे है, और जो दूसरा कर रहा है वो बिल्कुल नहीं है। अब तालिबान को किसने परवान चढ़ाया, कैसे परवान चढ़ाया, किस तरह क्या हुआ, किसने बामियान के बुत तोड़े, किसने औरतों पे जुल्म तशद्दुद किया, हमारे सामने उसवाए हसना मौजूद है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें मौजूद हैं। कुरान ने बार बार ये कहा है कि दीन इस्लाम जो है वो मुतवस्सित है, वो मिडिल पाथ को फॉलो करता है। लिहाजा अभी आगा मसूद साहब ने भी कहा कि ये जो इनकी जो एक सोच है, ये अपनी सोच गैर मामूली तौर से पाकिस्तान की मेजॉरिटी पे नाकाम तौर से मसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, बुनेर में, सवात में और काफ़ी जगहों पे इनके साथ मुज़ाकरात हुए, इनको हुकूमत ने खुला हैंड दिया, उनके जो वादे थे, मुतालबात थे, उन पे अमल दरामद किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वही अपनी एक रविश लेके ये चल पड़े। मैं फिर आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी सोच है जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में दूर होगी। फौरी इसका इंतहा पसंदी का कोई फौरी दहशतगर्दी का फौरी हल मौजूद है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कर्ब किया जा सकता है, लेकिन ये जो रेडिकलाइजेशन आ चुकी है, ये जो इंतहा पसंदी की सोच आ चुकी है कि मैं बिल्कुल इस पे दुरुस्त हूँ और बाकी सब गलत हैं, वो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए। एक बहुत देखें, गुज़िश्ता 30 सालों में जो हमने जहादी कल्चर को, टेररिज्म को, रेडिकलाइजेशन को, इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया है, उसको उतना ही अरसा चाहिए इसको डी करने के लिए, वरना ये पाकिस्तान को एक दीमक की तरह चाट जाएगा। मैं यहाँ ये बात भी बहुत ज़रूर आपके टीवी के तरफ से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी 95% पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो इस इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। सिर्फ 5% लोग जो हैं वो अपनी आरा को, अपनी मकासद को पाकिस्तान की मेजॉरिटी पे मुसल्लत नहीं कर सकते। और आप ये देखें कि गुज़िश्ता बरस जब हज़ारा कम्युनिटी पे हमला हुआ था, तो इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में और दूसरे शहरों में, मबर्रा इसके कि कोई सुन्नी है, शिया है या किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखता है, वो सामने आ गया था, बाहर आ गया था कि हम एक छोटी सी ताकत की मुसल्लत करदा चीज़ को नहीं मानने के लिए तैयार। अभी आप खुद देखिए ना, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, चाहे कोई सुन्नी है, शिया है, जनाजे में हमला करना किस मजहब में लिखा, चाहे वो इस्लाम में है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिंदू मजहब में देख लें, बुद्ध मजहब में देख लें, क्रिश्चियनिटी में देख लें, जुडाइज्म में देख लें, इससे नहीं मालूम हो रहा कि आपको कि ये लोग जो हैं ये खास एजेंडे पे काम कर रहे हैं जिसका मकसद सारे का सारा पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। और बिल्कुल आगा मसूद साहब सही कह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि 2014 के बाद जो अफगानिस्तान से इनखला है वो सारे का सारा मलबा जो है वो आखिर में पाकिस्तान पर डाल दिया। मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान को, खुद अपने आप को, हमारी हुकूमत को अब्सॉल्व नहीं कर रहा, हमारा मेजॉरिटी हमारा कसूर है। अगर हमारे अंदर गलतियां नहीं होंगी तो बाहर के एलिमेंट इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। लिहाजा मजहबी इंतहा पसंदी को खत्म करने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है जिसमें शायद हमें 5 साल 10 साल लग जाएं, लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फौरी तौर से खत्म करने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो ये है कि ये जो एलिमेंट हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, लश्कर जंग भी हो, लश्कर तैयबा हो, कोई भी हो, तालिबान हो, उनका ये डिसाइड करना है हुकूमत पाकिस्तान को कि ये हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं। एक दफा जब ये फैसला हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर एटलीस्ट आप दहशतगर्दी पर काबू पा सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अंद्राबी साहब। जनाब, जहाँ तक ये जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, तालिबान, अलकायदा, जिबहतुन नुसरा, जो पाकिस्तान के अंदर भी या पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की आलमी साजिश पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि आलमी सतह पर वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भी यही कहना है कि वो ग्रोह जो आज इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो दरअसल इस्लाम के दुश्मन हैं, लेकिन अपने आप को कहते वो नजरियाती हैं। जैसे तकफीरी ग्रोह है, वो अपने आप को नजरियाती कहते हैं और ये कहते हैं कि असल इस्लाम हमारा है। अलकायदा वाले ये दावेदार हैं कि असल इस्लाम उनके पास है। तालिबान भी उसी ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो ग्रोह हैं, बहरहाल ये जब कहते तो अपने आप को नजरियाती ग्रोह हैं, ये पाकिस्तान में इनका असल हदफ क्या है?
जी देखिए, मैं ये जरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नजरियाती गुरु हैं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि ये नजरियाती गुरु नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि क्या खारजी नजरियाती गुरु नहीं था? ये खारजी हैं, ये नजरियाती लोग हैं, ये तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं, ये इस्लाम की यही समझ रखते हैं और ये इस्लाम की यही समझ पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं। तो इससे ये कहना सही नहीं है। अब देखिए कि इसकी आप देखिए कि इसका ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह ऑपरेट होती है। ये बात, ये एक तरफ से मजहबी इंतहा पसंदी और तकफीरी मेंटेलिटी जो कि एक अकीदे की हैसियत उनके लिए रखती है, एक तरफ से वो है। दूसरी तरफ से दुनिया के शातिर सियासतदान, मगरिब और दूसरी कुव्वतें, उनके अपने सियासी मफादात होते हैं। इन दो की एक मैरिज होती है, एक सिम्बियोटिक रिलेशन, एक को दूसरे की जरूरत है, दूसरे के एक की जरूरत है। यानी ये आज तक हुआ भी है और इस वक्त भी यही हो रहा है। अब देखिए शाम में जो हो रहा है, शाम की जंग और बशर अल असद, ये सारा जो है ये इंसिडेंटल है। असल मसला जो है ये मगरिब की ईरान के खिलाफ जलगार है। ईरान के खिलाफ यलगार में यह मगरिब का सियासी हदफ है। अब हैंडशेक जो जिन लोगों के साथ इन्होंने किया, ये वही मजहबी जुनूनी लोग हैं जो अकीदे जिनका इतना फतूरी अकीदा है, जो इतने अपने जिनकी इतनी नफरत जिनके दिलों में है कि वो अपने दुश्मन का सीना फाड़कर उसका दिल चीरते, यानी उसका दिल खाते हैं। ये टेलीविजन पे ये सीन्स दिखाए गए। तो ये दो चीजें हमेशा मिलती हैं। अगर आप जरा सा तारीख में जाएं, गुज़िश्ता सदी में ये जो इस वक्त की रियासत है सऊदी अरब, यहां क्या हुआ? सऊदी अरब में भी यही दो चीजें थी, एक तो इब्न सऊद का सियासी टोला और दूसरा मजहबी टोला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का। अब इब्न सऊद के टोले को, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के टोले को यह कहा गया कि अगर आप हिजाज को उस्मानी सल्तनत से अलहदा करेंगे तो आप अपना शरीयत वहां पे नाफिज कर सकते हैं। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने इब्न सऊद के साथ हाथ मिलाया इसी शर्त में। और यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी और फिरका परस्त और यही खारजी तंजीमें, लश्कर जंगवी और बाकी तंजीमें, इन्होंने हाथ मिलाया है बलोचिस्तान के आर पार, ईरान के बलूचिस्तान में और यहां भी। मकसद यह है कि सारे बलूचिस्तान को अलग करवाया जाए और अमेरिका का यह सियासी प्लान है कि अमेरिका बलूचिस्तान को अलग करवाना चाहता है, लश्कर जंग भी वहां पे अपनी शरीयत नाफिज करेगी और ईरान को एनसर्कल करने का प्लान है। यह सारा प्लान है, यह पाकिस्तान की समझ ही नहीं है और वहां के हुक्मरान, वहां के तजिया निगार इन चीजों को समझते ही नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं, मैं और रिकॉर्ड कहता हूं, मुझे नहीं लगता है कि वो इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। दे आर एब्सोल्युटली अनेबल, उनकी ये काबिलियत नहीं है, उनके अंदर न विल है न दिमाग है कि वो ये चीज कंट्रोल कर सके।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आगा मसूद हुसैन साहब। जनाब, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी चाहे नजरियाती हो या गैर नजरियाती हो, उसके इस हद तक बढ़ने का जिम्मेदार कौन है कि आज मसाजिद, इमाम बारगाहें, मुकद्दस मराकिज, ज्यारत गाहें, औलिया की बारगाहें, हत्ता कायदे आजम रेजिडेंसी, तालीमी इदारे, इलाज मुआलजे के मराकिज, पब्लिक मकामात, कोई जगह महफूज नहीं रही?
देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मतलब मसला रहा है वो गुड गवर्नेंस का रहा है कि यहाँ पर एक तो इक्तसादी तौर पर कोई इंसाफ नहीं हुआ आवाम के साथ। यानी एक जागीरदारों का एक तबका था कि जो सारे वसाइल पर काबिज था, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ नहीं। तो यही वजह थी कि आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई 11-12 हजार मदरसे हैं, उसके अंदर सारे गरीब बच्चों को जो है उन्होंने बोझ उतारने के लिए वो दाखिल किया उनके वालदेन ने। अब ये बच्चे जो हैं वो हिल हिल कर कुरान करीम का मुताला करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि कुरान करीम में क्या लिखा है। उनको ना तर्जुमा सिखाया जाता है, ना उनको कुछ सिखाया जाता है। लेकिन अब देखिए, फिर हाल ही में कुछ ऐसी किताबें पाकिस्तान के अंदर शाया हुई हैं और जिसमें ऑथर के जाली नाम है, जिसके अंदर अहले तशी के खिलाफ ऐसी सी बातें लिखी गई हैं कि जिसको अगर आप भी पढ़ें तो आपको बड़ा अफसोस होगा और आपको बहुत दुख होगा कि इस किस्म की सोच भी लोग रखते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं यस कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस बात से, मेरा बहसियत एक राइटर थे, मेरा इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक अपने और दीगर साथियों से कि एक मुनज्जम साजिश है। देखिए ये जिहादी तंजीमें जो थी, जाहिर है कि पहले भी हमें मौजूद थी क्योंकि लड़ रही थी कश्मीर के अंदर जाके, और बाकायदा ये है कि वो कश्मीर में जो कश्मीर के जो लोग अपनी आजादी चाह रहे थे उनकी उन्होंने हिमायत में उन्होंने कुर्बानियां भी दी। लेकिन वो जिहादी तंजीमें वो नहीं है कि जो अब पाकिस्तान के खिलाफ पर सर पैकार हैं। ये लोग तो मैंने आपसे बताया ना कि ये तो बाहर के लोग हैं, दूसरी ये कि बाज ऐसे तबके हैं जो पंजाब के जुनूब से निकले हैं और बाद में उन्होंने अपने आप को जो है पंजाबी तालिबान की सूरत में पेश किया। इसके बाद ये है कि वो अलकायदा से मिल गए, इसके बाद जुनूदुल्ला ग्रुप जो कि बलूचिस्तान में ईरान के खिलाफ जो है बरसरे पैकार है, इन लोगों से वो मिलके और जंगी ग्रुप से मिलके। देखिए ये कोई, मैं आज आप बता रहा हूँ कि मैंने तो ऐसे लोगों के इंटरव्यू देखे किए हैं एक जो पकड़े गए और उनको कुछ इस्लाम से कोई उनका ताल्लुक नहीं था, और बाकायदा जब उनकी उन पर मतलब बाजपुरस हुई तो वो ये कह रहे थे कि हमें तो फला ने पैसे दिए थे कि साहब ये जो है ना ये काफिर है, इनको आप मार देंगे तो हम आपको इतने आपको पैसे देंगे। देखिए मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी साजिश है, और आलमी साजिश इस तरह की है कि वो लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, कभी शिया दुश्मनी पे रिक्रूट करते हैं, कभी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के सिलसिले में रिक्रूट करते हैं, कभी ये कहते हैं कि जो कि ये पाकिस्तान तो इस्लाम नाम पे बना था लेकिन यहाँ पर सेकुलर फोर्सेज आ गई हैं। देखिए कोई सेकुलर फोर्सेज नहीं है पाकिस्तान के अंदर, 90% से लेके लोग जो हैं वो बेचारे वो बहुत ज्यादा पुरमन लोग हैं, उनमें इस किस्म की इंतहा पसंदी नहीं है और ये इनको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। देखिए हजारा कम्युनिटी को जिस तरीके से मारा गया और परसों जिस तरीके से तालिबात जो तालिबात वापस जा रही थी अपने घरों को, उनको शहीद किया गया। ये सारे लोग कौन है? बीएलए कौन है? बीएलए के जो लोग हैं वो कोई जनवा में बैठे हैं, कोई तेल अवीव में बैठे हुए हैं और ये कोई ओमान में बैठे हुए हैं, यही वो हरकत कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि कतर से जो है वो बागियों की जो है उनको पैसे दिए जाते हैं सीरिया के खिलाफ, और क्या सऊदी अरब पैसे नहीं दे रहा सीरिया में जो जो क्रिमिनल्स आके लड़ रहे हैं? ये हम सबको मालूम है, लेकिन हम इस बात की मैं बिल्कुल आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ सुनने वाले कि पाकिस्तान का जो इदारे हैं वो मजबूत है, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और पाकिस्तान के जो आवाम है वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बहुत आसानी से ये जो छोटा सा ग्रुप है 7% या 8% जो है वो कब्जा कर लेगा। ये तो वो लोग हैं कि जो पैसे से मतलब लड़ रहे हैं, जो इनको जदीद हथियार दिए जा रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है दहशतगर्दी की। दुनिया में कोई मुल्क मुझे आप बता दीजिए कि जिसने दहशतगर्दी को इतनी आसानी से काबू में किया हो। पाकिस्तान के आवाम कोशिश कर रहे हैं, मुत्तहद होकर कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 20 जून को बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है इस्लामाबाद के अंदर और वो यही बात करेंगे कि जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं वो मिले और इस अफरीद को खत्म करने की कोशिश करें। और ये मैं आपसे बता दूं कि अभी मेरे मुझसे पहले जो साहब गुफ्तगू कर रहे थे वो बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि इनका बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान को अलहदा करना खुदा ना खास्ता और इसके बाद वो ईरान को भी मतलब ये कि नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ईरान के लोग एक मुत्तहद कौम है, ईरान के लोग दानिश्वर हैं, वो समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है जहालत भी है और नीम पढ़े लिखे लोग भी हैं, यही वजह है जल्दी से एक्सप्लाइट हो जाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासतदान हैं या इससे पहले भी थे, वो अपने मुल्क के मामलात को चलाने का बहुत मतलब अहलियत रखते हैं और वो समझते हैं कि कौन कौन सी कुव्वतें जो है ना पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, बलूचिस्तान में कौन सी कुव्वत काम कर रही है। करजाई साहब का परसों इंटरव्यू चला, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसका बस चले कि वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में बम फेंक दे। ये वो लोग हैं जो खुद करजाई साहब जो है ये CIA का एजेंट है, पहले बलूचिस्तान में रहता था और फिर इसके अब्बा को भी मारा गया। तो ये एजेंट है, ये मुसलमान नहीं है, इनके नाम मुसलमानों के हैं, ये एजेंट है, ये अपने ही भाइयों को कत्ल करवा रहे हैं। कितने अफगानिस्तान में लोग मारे गए अब तक, ये करजाई जो है 10 साल से बैठा हुआ है, पूछे इसने कितने लोगों को कत्लेआम किया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यही एजेंट है, इसी किस्म के नुमाइंदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आ चुके हैं और वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ठीक है वो कमजोर है, माशी तौर पर कमजोर है, उनके पास की वो हैसियत नहीं है जो ईरान में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात के अहल है कि वो अपने मुल्क को बचाएंगे और ये दहशतगर्दी इंतहा पसंदी जो फैल चुकी है इसको भी वो खत्म करने की कोशिश करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नजीर हुसैन साहब। जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्द गुरोह हैं, बहरहाल वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो लश्कर जंगवी हो, सिपाह साहबा या ये जुंदुल्लाह वाले हैं, ये सब अच्छा, इनका तालिबान से बहुत गहरा राबिता है और तालिबान का अलकायदा से बहुत गहरा राबिता है। इस वक्त तालिबान के साथ मुजाकिरात के हवाले से जो गुफ्तगु हो रही है, इसमें बहुत से लोगों का कहना यह है कि तालिबान को मुजाकिरात की मेज़ पर लाना अमरीकी एजेंडा है, और इसकी तायद इससे भी होती है कि कतर में तालिबान का दफ्तर खोला जा रहा है और बहुत जल्द अमेरिका की सरपरस्ती में मुजाकिरात शुरू होंगे। 3 मिनट का वक्त है हमारे पास, कि ये अमेरिकी एजेंडा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
बस 3 पॉइंट ही मैं बताऊंगा। एक तो पहले ये आप समझ लेंगे, पाकिस्तान में सुन्नी शिया कोई जंग नहीं है। अभी ये जो लश्कर जंगवी है या सिपाही साहबा, इसने दूसरे नाम से 135 हलकों में अपने उम्मीदवार जमा किए, खड़े किए थे, एक उम्मीदवार नहीं जीत सका। और दूसरी बात यह आपको बता दूंगा, जमील तारिक साहब जो पाकिस्तानी सुन्नी उलमा की नुमाइंदगी करते हैं, वो गिलगित तशरीफ ले गए थे गुज़रे दिनों, और गिलगित में शिया जुम्मा की मस्जिद में उन्होंने तकरीर की है और इसका दर्स दिया है कि सुन्नी शिया मतहद होकर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे और इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। दूसरी तरफ आप ये देखें, तालिबान को क्रिएट करने वाले कौन हैं और तालिबान को प्रमोट करने वाले कौन हैं और अब तालिबान के साथ मुजाकरात करने वाले कौन हैं। एक वक्त ये था जब पाकिस्तान तालिबान से मुजाकरात करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान से मुजाकरात करने ही नहीं दिए गए कि जी पाकिस्तान अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान में तमीज़ करे। अब दूसरी बात है कि जो अभी हुकूमत आई है, इन्होंने मुजाकरात के लिए सारी हम राहमवार कर ली थी, लेकिन अमेरिका ने एक ड्रोन हमले के तहत वली रहमान को ही मार दिया, जिससे सारे ताल्लुकात, इस वजह से तालिबान भी फिर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें तालिबान से बिल्कुल ही मुजाकरात नहीं करने चाहिए, बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इस बका की जंग लड़ने के लिए तमाम सियासी कुवतों को सामने आना होगा, वगरना पाकिस्तान के लिए बहुत से नुकसान हैं। और बिल्कुल आगा मसूद साहब ने यह बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि पाकिस्तानी कौम ने इतनी रेजिलियंस दिखाई है, इतना जज्बा दिखाया है कि हम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से एक जंग लड़ रहे हैं, और फिर ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है, ये जो फिरका परस्ती है, ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये जो इंतहा पसंदी है, ये सिर्फ 5% लोगों में है, वो अपनी जो ज़ात है, अपना जो एजेंडा है, वो कभी पाकिस्तान में मुसलत नहीं कर सकेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये लोग कामयाब होते तो 135 सीटों में से कोई एक सीट तो लेके जाते, कोई सीट नहीं लेके गए हैं, लिहाजा ये एक गैर ताकती, गैर मामूली और बाहर के एफर्ट्स से पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन फैला रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान में सरगर्म इंतहा पसंद दहशतगर्द गुरोहों की अवाम में जड़ें नहीं हैं और ये तमाम गुरोह वाबस्ता है तालिबान से, और तालिबान और अलकायदा एक सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ आलमी साजिश के तहत तश्कील दिए गए हैं। इस बारे में हम फिर किसी प्रोग्राम में तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।